नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार प्लस टू उच्च विद्यालय नगर नौसा में इतिहास शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बच्चों, आज हम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आज हम विभाजन से संबंधित मौखिक साक्ष्य के द्वारा भारतीयों एवं इतिहासकारों द्वारा जो विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई उस पर हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के लंबे दौर के बाद अंततः 1947 में भारत को आजादी मिली। इस आजादी को सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर भी कहा जाता है। आजादी मिलने के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। विश्व मानचित्र पर दो संप्रभु राज्य भारत और पाकिस्तान सामने आए। विभाजन क्यों और कैसे हुआ, विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन था, विभाजन के क्या परिणाम हुए, इन पर विगत वर्षों में अनेक शोध हुए हैं और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लिखित साक्ष्यों के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्यों से भी इस विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। विभाजन और मौखिक साक्ष्य का महत्व। मौखिक साक्ष्य के आधार पर अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने विभाजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की है। मौखिक साक्ष्य का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्मृतियों और अनुभवों को स्थान दिया गया है। विभाजन के काल की और उसके बाद की घटनाओं की स्मृतियों भी विभाजन के स्वरूप और प्रभाव पर प्रकाश डालती है। निस्संदेह मौखिक साक्ष्य इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनका आधुनिक काल में उपयोग किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्मृतियों से बंटवारे जैसी त्रासदी के दौरान और बाद में भी जनमानस की क्या स्थिति थी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये व्यक्ति विशेष के साथ घटी घटना का सजीव चित्रण करते हैं। सरकारी दस्तावेजों में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकारी दस्तावेजों मुख्यतः सरकारी नीतियों और दलगत मामलों से संबंध है। इनमें अंग्रेजी सरकार और प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों की विभाजन के प्रति सोच तथा शरणार्थियों की समस्या को हल करने के प्रयासों के विषय में तो जानकारी मिलती है, परंतु ये दस्तावेज यह नहीं बतलाते हैं कि विभाजन का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार औरतों पर विभाजन के दिनों में क्या बीती, इसका भी उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौखिक इतिहास के द्वारा आम औरतों मर्दों के अनुभवों की वास्तविक जानकारी मिलती है, जिसका उल्लेख इतिहास में सामान्यतः नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्यों की सीमाएं। यद्यपि कुछ इतिहासकार इतिहास लेखन के लिए भौतिक साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानकर उनका उपयोग कर रहे हैं, परंतु अनेक इतिहासकार मौखिक साक्ष्यों के महत्व को नकारते हैं। इसके लिए अग्र लिखित कारण सुझाए गए हैं। मौखिक जानकारियों में सटीकता का अभाव है। इतिहासकारों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कोई समान धारणा नहीं बनाई जा सकती। छोटे छोटे व्यक्तिगत अनुभवों को आधार बनाकर पूरी घटनाक्रम की तस्वीर तैयार नहीं की जा सकती है। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि मौखिक साक्ष्य सतही मुद्दों से जुड़े होते हैं। इनके आधार पर ऐतिहासिक प्रक्रिया का कारण नहीं ढूंढा जा सकता है। मौखिक साक्ष्य सामान्यतः साक्षात्कार के द्वारा हासिल किए जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार में लोग बहुधा निजी आपबीती शर्मनाक और दुखदायी घटनाओं का उल्लेख नहीं करते हैं। ऐसा विशेषतः औरतों के संदर्भ में होता है। कोई भी औरत अपने ऊपर किए गए घिनौने अत्याचारों का खुलकर उल्लेख नहीं कर सकती है। मौखिक साक्ष्य का उपयोग करने में याददाश्त की समस्या भी आ रही आती है। घटना के अनेक वर्षों बाद एक एक बात को सही सही याद रखना कठिन है। साथ ही साथ साक्षात्कार के समय की वर्तमान परिस्थिति भी घटना के विवरण को प्रभावित करती है। इन सब के बावजूद मौखिक इतिहास के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मौखिक और प्रकाशित साक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर अनेक आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आंतरिक अंतर विरोधों की सूक्ष्मता से पड़ताल कर उसके आधार पर विश्वसनीय तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। अगर इतिहास में साधारण और कमजोरों के बावजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभवी पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।